नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार इंडिया एआई मिशन के तहत देशभर में 500 से अधिक डेटा लैब विकसित करेगी। एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 से पहले आयोजित कार्यक्रम में टेक महिंद्रा, फ्रैक्टल एनालिटिक्स और भारत जेन सहित 8 कंपनियों को इस उद्देश्य से चुना गया है। सरकार ने IIT बॉम्बे के नेतृत्व में गठित संकाय के लिए इंडिया एआई मिशन के तहत 988.60 करोड़ रूपये आवंटित किए हैं। इंडिया एआई मिशन क्षेत्र विशेष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोग, लार्ज लैंग्वेज मोड, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट और कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता विकसित करने की केंद्र की पहल है। इस वर्ष 10,300 करोड़ रुपए के परिव्यय से इसे स्वीकृति दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अगली पीढ़ी के GST सुधारों का लक्ष्य स्पष्ट किया है। कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में GST सुधार समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य देश की कर और राजस्व प्रणाली को सरल और बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि इन संशोधनों से पहले पिछले 8 वर्ष से लागू GST रूपरेखा की व्यापक समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर दरों में कटौती की गई है। नई दरें दुर्गा पूजा से पहले सोमवार 22 सितंबर से लागू हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि NDA सरकार केंद्र के पूर्ण सहयोग से एक विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 11 वर्षों में 14,85,000 करोड़ रूपये से अधिक की सहायता दी है। बेगूसराय में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार यात्रा का उद्देश्य वोट बैंक की राजनीति है।
यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था, यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था, यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था, यात्रा का विषय हर गांव हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था, यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय।
भारत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से विश्व स्तरीय सुविधाजनक बंदरगाहों का निर्माण करेगा। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत मत्स्य विभाग ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के साथ तकनीकी सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत देश के 3 प्रमुख बंदरगाह द्वीप में बनकबरा, पुदुचेरी में कराईकल और गुजरात के जखाऊ गाह पर 369.80 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। अमेरिका ने गाजा में तत्काल और प्रभावी संघर्ष विराम तथा बंधकों की रिहाई के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर फिर वोटों का इस्तेमाल किया है। सुरक्षा परिषद के अन्य सभी 14 सदस्यों ने इसराइल से फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया और गाजा की स्थिति को अत्यंत गंभीर बताया। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर परिचालन प्रतिबंधों में दी गई छूट रद्द करने देने की घोषणा की है। ये छूट वर्ष 2018 में दी गई थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बंदरगाह पर परिचालन से जुड़े लोगों पर ईरान स्वतंत्रता और परमाणु अप्रसार अधिनियम के तहत प्रतिबंध लागू रहेगा। यह निर्णय इस वर्ष 29 सितम्बर से प्रभावी होगा। इस वर्ष मई में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह परिचालन से संबंधित 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत भारत ओमान की खाड़ी में बंदरगाह के बुनियादी ढांचा विकास के लिए 25 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने मॉनसून के बाद चारधाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर शुरू करने की अनुमति दे दी है। नागर विमानन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पूरी छानबीन और सभी पहलुओं की जांच करने के बाद ये मंजूरी दी गई। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने महानिदेशालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई समीक्षा बैठकें की। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप के कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। देश के पूर्वी और मध्य भाग में अगले 2 दिन तक ऐसी ही तेज वर्षा की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी अगले 2 से 3 दिन तक के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।